ఏషో పంచ నమో యారో సౌవ పావ పణాసనో మంగళానం చ సవేషిం పఠమం హవై మంగళం పఠమం హవై మంగళం. పంచ పరమేష్ఠి భగవాన్ జీ అహింసా పరమో ధర్మ కీ ఆచార్య గురువర్ శ్రీ విద్యాసాగర ముని మహారాజ్ కీ जैन शब्द जातिवाचक नहीं गुणवाचक है, यह बात अच्छी तरह से समझ में आ गई है. इससे ही यह सिद्ध होता है जाति वंदनी नहीं, कुल भी वंदनी नहीं, शरीर भी वंदनी नहीं, चमत्कार भी वंदनी नहीं, शक्ति भी वंदनी नहीं, बल जिसको कहते हैं. इस देवता के पास इतना बल है, इतनी शक्ति है, इतना चमत्कार है, ये चीजें जैन धर्म के अंदर पूजनी और वंदनी नहीं है. जैन शासन के भीतर आत्मा के गुणों की वंदना है. जो आत्मा के भीतर से उत्पन्न होते हैं वो गुण वंदनीय है. पूर्णतः आत्मा जब शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए, वो विशुद्ध आत्मा तो वंदनीय है ही, सिद्ध अवस्था वाला. किंतु उससे पहले पहले शरीरधारी आत्मा की भी हम वंदना करते हैं. जैसे अरहंत की हम वंदना करते हैं, आचार्य भगवान की वंदना करते हैं, आचार्य परमिष्ठी उपाध्याय परमिष्ठी की वंदना करते हैं और साधु की वंदना करते हैं. ये चार परमिष्टि शरीरधारी होने पर भी हम वंदना कर रहे हैं, तो क्या हम शरीर की वंदना करते हैं, गुणों की वंदना करते हैं? भगवान को 1008 लगा करके वंदना करते हैं. आपको पता है 1008 ये गुण आत्मा के हैं कि शरीर के हैं? किसने कहा आत्मा के? कहां पढ़ा आत्मा के हैं? आपको ये भी मालूम नहीं है. 1008 के आत्मा के गुण नहीं है, ये शरीर के शुभ लक्षण माने गए. शरीर का सौष्ठव सौंदर्य शुभ चिन्ह ये माने गए. संपूर्ण अरहंत भगवान के शरीर में 1008 शुभ चिन्ह होते हैं, शुभ लक्षण होते हैं। ये सारे शुभ नाम कर्म के उदय से प्राप्त शुभ चिन्ह हैं। ये कर्म की देन, कर्म से उत्पन्न गुण हैं, शरीर के गुण हैं, शरीर का सौंदर्य, शरीर का गुण, शरीर की दृढ़ता, शरीर का गुण, शरीर का बल, शरीर का गुण, शरीर के गुणों की उपासना जैन परंपरा में नहीं, आत्मगुणों की उपासना जैन परंपरा में है। 1008 लगा करके 1008 गुणों की वंदना नहीं की जाती, वो शरीर के गुण हैं। 1008 वाले ये भगवान हैं, इनके शरीर के शुभ लक्षण बाहर से ही जब इतने हैं तो भीतर से कितने होंगे, ये विचार आता है। हम उस दृष्टिकोण से नमस्कार करते हैं, हे भगवान आप शरीर की अपेक्षा से ही 1008 गुणों को धारण कर रहे हैं, फिर आत्मा के गुण तो आपके अनंत हैं। हम 1008 से आकर्षित हो रहे हैं। आकर्षित होना बात दूसरी है, आकर्षित होने में कोई दिक्कत नहीं। आकर्षित होकर के उसमें डूब गए तो वंदना ही करने लग जाए तो फिर कहते हैं जाति, गुण, शरीर, बल, चमत्कार, ये सब वंदनीय नहीं है और आप वंदना कर रहे हैं, उनको वंदनीय समझ रहे हैं। समझ ही ऐसी है कि वो वंदनीय हैं, तो ये अपना ज्ञान का दोष है। क्योंकि एक भक्त भगवान के गुणों की वंदना करता है, गुणों की उपासना करता है, तो उन गुणों की उपलब्धि के लिए करता है। तो 1008 आपको गुण आवश्यक चाहिए क्या? महाराज अभी तक तो वही चाहते थे हम। 1008 गुण हमें नहीं चाहिए, 1008 गुणों को माध्यम बनाकर हम भगवान के आत्म गुणों की स्तुति कर रहे हैं और पाने की इच्छा आत्म गुणों की इच्छा। हे भगवान आप अनंत ज्ञान के धारी हैं, केवल ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं। वह सर्वज्ञपना आत्मा का गुण है या शरीर का? आत्मा का गुण है। केवल ज्ञान पाना है कि 1008 गुण पाकर के रहना है? अपन को भगवान बनना है ना, न कि सुंदर शरीर पाना है। और शरीर सुंदर अपने को यदि नहीं भी मिलता है तो क्या मोक्ष नहीं होगा? कैसे कैसे कुरूप शरीरी भी हुंडक संस्थान वाले, बताया है जिनागम में, हुंडक संस्थान वाले जिस मनुष्य का एक भी शरीर अंगोपांग ठीक नहीं, अष्टांग वक्र, आठो अंग शरीर के जिनके वक्र हैं, उनके लिए भी निर्वाण की उपलब्धि संभव है। मोक्ष जाने वाले सभी सुंदर शरीरी होते हैं, होना ही चाहिए, जरूरी? जरूरी है क्या? हाँ, ऐसा जरूरी होता तो इनकी भी स्तुति होती। सुंदर शरीर मिले बिना और 1008 गुण वो शरीर के प्राप्त हुए बिना मोक्ष तो मिलता ही नहीं, आत्म गुण तो प्राप्त हो ही नहीं सकते, ऐसा कोई सिद्धांत होता, ऐसा कोई संविधान होता, नियम होता, तो हमारे लिए 1008 गुणों की उपासना करना भी अनिवार्य होता। तो 1008 गुण वंदनी नहीं, वंदनी तो आत्मा के गुण ही वंदनी। महाराज शास्त्रों में तो आता है 1008 गुणों का वर्णन, शास्त्रों में क्या नहीं आया? वो 1008 का भी वर्णन करेंगे और आत्मा के अनंत गुणों का भी वर्णन करेंगे, पर ये वर्णन कहीं आता है क्या 1008 गुण वंदनीय हैं और आत्मा के गुण वंदनीय नहीं हैं? एक हजार आठ गुण ये अवंदनीय बताया जा रहा है, लेकिन मुनि के एक से आठ, भगवान के 1008, मुनि के एक से आठ, एक से आठ ये क्या है? नमस्कार करने वाले तो आज तक यही करते होंगे, हम बता रहे हैं सुन लो। मुनि को 108 कह करके 108 गुणों की वंदना करते हैं, भगवान को 1008 समझ करके उनकी वंदना करते हैं। अब हम पूछना चाहते हैं इन दोनों में क्या अंतर है? क्या 108 भी शरीर के ही गुण है? हाँ, 108 ये शरीर के गुण नहीं है, 1008 शरीर। शास्त्र में यह बताया है सिर से लेकर पांव तक 900 शुभ चिन्ह होते हैं। किसके? केवल तीर्थंकरों के, अन्यों के लिए नहीं, अन्यों का नियम नहीं कि शरीर स्वस्थ पूरी तरह से पुण्य प्रकृति के उदय से, शुभ नाम कर्म के उदय से बिल्कुल शुभ लक्षण, सभी शुभ लक्षण रहे, ये नियम नहीं बनता अन्य सामान्य जीवों के लिए। नियम नहीं बनेगा, लेकिन तीर्थंकर होकर के जो भी जन्म लेंगे उनको तो 1008 गुण तो नियम से शरीर में रहेंगे ही, नियम से उनके लिए सिद्धांत है ये। 1008 जिस किसी भगवान को नहीं लगा सकते हम, चार अनंत चतुष्टय सुना है ना, अनंत चतुष्टय क्या होते? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये चार घाती कर्मों को नाश करने पर ये चार गुण प्रकट होते, ये आत्मा के गुण हैं। जो कर्मों के नाश होने पर प्रकट होने वाले गुण होते हैं वो आत्मा के होते हैं। कर्मों को नाश करने पर, और ये कर्मों को नाश करने पर उत्पन्न नहीं हुए 1008, ये कैसे हो गए? जन्म के साथ ही 1008 है। तीर्थंकरों का शरीर ऐसा है, तीर्थंकरों के शरीर में ये लक्षण होते हैं कि सिर से लेकर पांव तक 900 होते हैं और पांव के पगतल में 108 होते हैं। 900 और 108, 1008। ये शरीर संबंधित है और ये जन्म से है। यदि आप 1008 की वंदना कर रहे हैं तो जन्मे भगवान की भी आप, भगवान को भी आप नमस्कार कर रहे हैं। जन्म लिया हुआ बालक तीर्थंकर हो, चाहे राजा हो, चाहे चक्रवर्ती हो, कितना भी महान हो, वो नमस्तु के योग्य नहीं है। तीर्थंकर नमोस्तु के योग्य नहीं हैं, जब तक कि 108 नहीं बनेंगे वो, मतलब मुनि नहीं बनेंगे। नमो लोए सव साहुनम, मुनि बन जाए 108 आ जाए तो नमो लोए सव साहुनम, सारे तीन लोक के जीव, सारे देव, सारे मुनि नमोस्तु करते। 1008 गुण ही वंदनी है ये कहेंगे तो मुनियों को भी वंदना करनी पड़ेगी उनकी, मुनि तो 108 वाले वो है संयमी, और फिर 1008 की वंदना करें तो तीर्थंकर बालक की वंदना हो जाएगी। 1008 तो वो भी है, तो तीर्थंकर भी वंदनीय नहीं है। कहां से कहां तक, किस अवस्था से किस अवस्था तक, बचपन से लेकर राज अवस्था तक वंदनीय नहीं है, क्योंकि वस्त्रधारी जैन धर्म में वंदनीय नहीं होता। जहां जहां वस्त्र है वहां वहां हिंसा है, जहां जहां हिंसा है वहां वहां अधर्म है, जहां जहां अधर्म है वहां वहां वंदनीय नहीं है। अधर्म की वंदना करे कि धर्म की वंदना, ये महाराज इंद्र देवता तो वहां ले गए थे, अभिषेक किया था, उन्होंने भी तो झुका था तीर्थंकरों के सामने, उन्होंने तो नमस्कार किया था, बिल्कुल नमस्कार किया था, आदर किया था, विनय किया था, जन्म पे ही वैभव के साथ उनको ले गए थे, जन्म कल्याणक मना रहे थे। जन्म कल्याणक मनाने के लिए तीर्थंकर बालक को सुमेरु पर्वत के पांडुक शिला पर विराजमान करके उनका जन्माभिषेक किया। वो बालक अर्हंत है क्या? अब ये अर्हंत नहीं, मुनि है क्या? भले ही कपड़े उतार दो, भले ही उसके कपड़े उतार करके आप अभिषेक कर रहे हैं, मुनि है क्या? 108 है क्या? 108 नहीं, तो फिर क्या है वो? संयमी है क्या? तो संयमी नहीं है तो क्या है उसका अपोजिट? असंयमी। जब तक पंच महाव्रतों का संकल्प नहीं होता तब तक आत्मा के गुण प्रकट नहीं होते। पांच महाव्रत ही आत्मा के गुण, पांच महाव्रत अगर ले लिया तो समझ लेना आत्मा में पूज्यता आ गई, उनको नमस्तु बोलना पड़ेगा। वो सूत्र याद किया कि नहीं किया? असंजदम न वंदे याद हो गया कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, नहीं करेंगे भी नहीं याद। वह एक ही गाथा ऐसी है जिसका चिंतन करते करते आप सारे जिनागम का अर्थ लगा सकते हैं। असंजदम न वंदे, असंयमी वंदनी नहीं होता। असंयमी कौन? तो परिग्रहधारी जीव असंयमी, वस्त्र आभूषण ग्रह दुकान परिवार, इस झंझट में, इस यही संसार है, इस संसार के झंझट में फंसा हुआ जीव अवंदनीय, असंयमी अवंदनीय, इससे बाहर आया हुआ वंदनीय। इसके बाद भी कह रहे हैं बाहर तो आया है, सब कुछ छोड़ा तो है, लेकिन रागादि भाव अभी गए नहीं परिग्रह के प्रति, मोह तो बच गया है लेकिन वस्त्र छोड़ दिया है। तो ये जो अवस्था है, पीछे कमंडलू आ गई, नग्न तो आ गया, अब ये बताइए वहां पांडुक शिला पर ले जाने वाले इंद्र देवता बालक को दिगंबर बनाया कि नहीं बनाया? क्या वस्त्र से तक्ष कराया? आपका बच्चा जन्मता है कपड़ा पहना करके स्नान कराते, नग्न ही रहता है ना, मां उसको गोद में रखकर नग्न ही रख करके उसका स्नान कराती है। आप घर में स्नान कराते हैं, इंद्र देवता पांडव शिला पर स्नान कराता है, सिर्फ इतना ही अंतर है। तो इंद्र देवता घर में ही स्नान क्यों नहीं कराया, उन्हीं के घर जाते स्नान कराते और चले जाते, नहीं। ये तीर्थंकर प्रकृति को बांधकर आया हुआ महान आत्मा उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाने हेतु, उनकी महिमा बढ़ाने हेतु, उनकी कीर्ति तीन लोक में फैले, फैलाने हेतु, प्रतिष्ठा को व्यापक बनाने हेतु उस बालक को सुमेरु पर्वत पर रखकर अभिषेक किया जाता है। सारे देवगण जुड़ जाते हैं, कोई मनुष्य साथ में एक भी गया था? कहीं शास्त्रों में ये नहीं आया। जन्माभिषेक के लिए सुमेरु पर्वत पर ले गए और केवल देवलोग ही चले गए, देवलोग मनुष्यों को नहीं ले गए। देखने के लिए तो जाते साथ में कम से कम, करने नहीं देते तो कोई बात नहीं, दूर बैठ करके देख सकते थे, लेकिन नहीं, देवलोग उनको नहीं ले जाते। कैसे ले जाएंगे? सुमेरु पर्वत के उस स्थान पर बालक को ले जाया जाता है, बहुत ऊंचाई पर है वो। उस सुमेरु पर्वत के चार पांडव शिला है, एक पूर्व, एक पश्चिम, एक दक्षिण और एक उत्तर दिशा में। उस पर्वत पर चारों तरफ चार पांडव शिला, उधर से ऐरावत क्षेत्र में जन्म लेने वाले तीर्थंकरों का अभिषेक होता है उस दिशा में, जो पांडव शिला है उस पर। इस साइड में जो रहता है वो भरत क्षेत्र वाले तीर्थंकरों को ले जाकर के जन्माभिषेक कराते हैं। पूरब और पश्चिम दिशा में विदेह क्षेत्र है, विदेह क्षेत्रों में जन्म लेने वाले तीर्थंकरों का जन्माभिषेक पूर्व और पश्चिम दिशा में रहने वाले पांडुक शिला पर होता है। अब वहां अभिषेक करके भगवान इंद्र, भगवान तो नहीं है अभी, भगवान है क्या? नहीं, भगवान जन्म कहने में तो आता है, व्यवहार है ये। जन्मे कौन है? बालक। जन्मे कौन है? एक मानव, मानव का जन्म हुआ है, जो महान व्यक्तित्व को लेकर के, योग्यता को लेकर के पैदा हुआ है, एक मानव का जन्म हुआ है। आपके जन्मे और उनके जन्मे कोई अंतर नहीं, आप भी मानव, वो भी मानव, सिर्फ अंतर इतना है कि वो महामानव बनने की योग्यता रखते हैं, आप में वो योग्यता नहीं है, बन भी सकते नहीं भी बन सकते, सिर्फ इतना ही अंतर है। लेकिन वो गारंटी बनेंगे, उनका दीक्षा लेना गारंटी है, उनको केवल ज्ञान होना गारंटी है, उनका दिव्य ध्वनि छेड़ना गारंटी है, उनका मोक्ष जाना उसी बोध से गारंटी है, आपकी क्या गारंटी? महाराज हम लोगों की कोई गारंटी नहीं रही थी, हम क्या बन जाएंगे? हम तो गंगा गए तो गंगा का दास, हम यमुना गए तो यमुना का दास बन जाते हैं। तीर्थंकर ठोस रहते हैं, खुद भी ठोस रहते हैं और दूसरे को भी ठोस बना देते हैं। 1008 ये जो गुण हैं, 1008 गुण शरीर से संबंधित गुण हैं, इनकी वंदना नहीं की जाती। जाति शरीर से संबंधित होता है, जाति उच्च जाति की वंदना नहीं की जाती, उच्च कुल वो भी वंदनीय नहीं है, धनाढ्यपना चक्रवर्तीपना वो भी वंदनीय नहीं है। ये सब वंदनीय होते ना तो तो हम लोग भी गुणों के उपासक हैं मुनि महाराज लोग, तीर्थंकरों के गुणों की उपासना करें क्या 1008 गुणों की रोज वंदना करें? अगर 1008 की वंदना हम करेंगे तो जन्मे बालक की वंदना हुई क्या नहीं हुई? और हमने फिर गलत किया क्या सही किया? गलत किया। पूजनीय गुण, अर्चनीय गुण, वंदनीय गुण कब प्रकट होते हैं? तो दीक्षा लेने के बाद ही प्रकट होते हैं। 1 से 8 पहले प्रकट होते हैं। तीर्थंकरों ने दीक्षा ले ली, कितने गुण आ गए आत्मा के? 1 से 8। आप भी दीक्षा ले ले मुनि दीक्षा तो आपके भी 1 से 8 ही रहेंगे। यह 1 से 8 कौन कौन से हैं लोग पूछते, वो भी मालूम नहीं, कभी सोचा नहीं, चिंतन नहीं किया। हमारा जो भी बताओ ये भी बताओ, हमको तो कुछ नहीं आता, ये भी सीढ़ी से सिखाओ बस। हम कहते हैं इसलिए स्वाध्याय करो, स्वाध्याय मंडली बनाओ, जबरदस्त स्वाध्याय चले तो ज्ञानी बनते जाओगे, नहीं तो जिंदगी धर्म करते हुए भी क्रियाकांड में निकल जाएगा। जिंदगी भर कूटा क्या निकला? एक दाना भी निकला, भूसा कूटा, चावल का भूसा, भात। भूसे को कूटने के समान है जीवन। अगर ज्ञान नहीं है, क्या वंदनी क्या अवंदनी, क्या करना क्या नहीं करना, विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो ये जिंदगी भर करो तुम, मंदिर आओ, भगवान को इधर का चावल उधर अर्पित करो, भगवान आया दर्शन किया, भले ही श्रद्धा से कर रहे हैं, अंधश्रद्धा है वो। अंधश्रद्धा को मिटाने के लिए सम्यक ज्ञान चाहिए, और सम्यक ज्ञान को उदित करने के लिए जीवन में आपको स्वाध्याय चाहिए, निरंतर तत्व चिंतन मनन चाहिए। ये तो करना ही पड़ेगा, उसके बिना रास्ता नहीं है। स्वाध्याय तो करना ही पड़ेगा। जैन धर्म इतना सस्ता नहीं कि बैठे बैठे कुछ भी हाथ पांव फैला के फिर आपको सुख मिले, मोक्ष मिले, कर्म निर्जरा मिले, पुण्य मिले, ऐसा संभव नहीं। ज्यादा मेहनत किसके प्रति करो? ज्ञान प्राप्ति के प्रति ज्यादा मेहनत करो, शुरू करो, घर में शास्त्र संग्रह करो। हमने कई बार बताया था, मेरे पास लिस्ट है, शास्त्र मंगवाओ, किसी को चिंता नहीं, एक ने भी आकर के नहीं पूछा कि महाराज लिस्ट कहाँ है, वो हमको दे दो। कितनी रुचि है अपनी, संकलन करो पहला, सच्चे सच्चे शास्त्रों का संकलन पहला घर में करके लाइब्रेरी बनाओ, नित्य उन शास्त्रों की वंदना करो, अर्चना करो। ये क्या करते बैठे क्रियाकांड, वही रूढ़ी, वही बातें, वही विचार, पुराने पुराने। इसमें कोई दम नहीं, ऐसे ऐसा धर्म को अनादिकाल से किया, उससे कोई भी परिणाम आज तक नहीं निकला, और एक बार और करना चाहते हैं तो कर लो, कौन मना करता है? एक बार और भूसा कूटो, पगार मिलता है क्या देखेंगे, कुछ दाने मिलते हैं क्या देखेंगे? असंभव। क्रियाकांडों के माध्यम से धर्म होना असंभव, असंभव, असंभव। भावपूर्ण क्रिया के लिए मोक्ष मिलता है, और भावों को जगाने के लिए ज्ञान आवश्यक है। सच्चे भाव जगे, अंधश्रद्धा से मुक्त भाव जगे, सम्यक भाव जगे, यथार्थ भाव जगे, सत्य भाव जगे, सत्य का दर्शन हो। इसके लिए विदाउट ज्ञान सत्य का दर्शन हो जाएगा। फिर क्यों चिंता नहीं करते कि शास्त्र संग्रह करना चाहिए, घर में रखना चाहिए, वंदना करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। आप महाराज कितने भी बता दो, हम शांत ही रहते हैं।
जो निरक्षर है वो कहीं से आते ही करेंगे, जो निरक्षर है वो कहीं से आते ही करेंगे,
जो साक्षर है उनके पास जाकर। जो साक्षर है उनके पास जाकर, मैं मंडली बनाऊ कह रहा हूं ना, स्वाध्याय मंडली बनाओ, शास्त्र पहले रखो। टाइम कहीं फंस गया है क्या, उसको निकालना, कीचड़ में फंस गया है उसको निकालना चाहिए, निकालना ही पड़ेगा। ये महत्व की बात है और ये करना ही पड़ेगा, टाइम निकालना ही पड़ेगा, उसके बिना कोई रास्ता नहीं है। जिंदगी बेकार जा रही कि नहीं जा रही, महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपके पास। हम महिलाओं से कहना चाहते हैं, वो पूजन में बहुत इंटरेस्ट लेती, और आप लोगों से हम कहना चाहते आप किसी में इंटरेस्ट नहीं लेते। आप लोग पूजन में इतना इंटरेस्ट लेते हैं, वही इंटरेस्ट अगर जन्म से लेकर अब तक स्वाध्याय में लिया होता तो कितनी कर्म की निर्जरा हो गई होती, कितना पुण्य का बंध हो गया होता, भाव जग गया होता, सम्यक ज्ञान पैदा हो गया होता, सम्यक दर्शन भी आ गया होता। ये सब होता कि नहीं होता? आपने किया क्या है बताओ, और वही करते जा रहे हैं। जो टाइम है वो पूजन में बेकार करते जा रहे हैं, रहता है एक घंटा और उसको भी क्रियाकांड में फंसा देते हैं। ज्ञान जो का त्यों धरा रहा दूर। नहीं, हमने संकेत दिया था, ये एक संकेत में जागृत हो जाएंगे। मैं परीक्षा कर रहा था, मैंने कहा मेरे पास लिस्ट है, लिस्ट है ले लो, लेने की चिंता नहीं किसी को। अब कितना स्वाध्याय की रुचि होगी, शास्त्र बुलवाना है कि नहीं बुलवाना? बाजार में जाते हैं तो हजार हजार खर्च करके साड़ी खरीद के लाते, शरीर के दास बन गए, शरीर की चिंता इतनी होती है कि अच्छे साड़ियां चार चाहिए, चार नहीं दस चाहिए, दस नहीं सौ चाहिए, स्टॉक करते जा रहे हैं। साड़ी स्टॉक करना आता है और जिनवानी को सम्मान करना नहीं आता? जिंदगी जीने के लिए शरीर को क्या मोह करना, इतना इतना शरीर के प्रति मोह, इतना शरीर के प्रति लगाव, इतना देखभाल, भगवान से भी ज्यादा देखभाल शरीर का हो रहा। शरीर भगवान है, उनके लिए सौ साड़ी चाहिए। ये शरीर मोह भी मिथ्यात्व है कि उसी में हम डूबे रहे, उसी का संपोषण करते रहे, आत्मा को भूल गए, ये सबसे बड़ा मिथ्यात्व। शरीर के पीछे आत्मा को भूल जाना, इतना भूल जाना कि उधर केयर ही नहीं करना, ध्यान ही नहीं ले जाना, शरीर भगवान है क्या? शरीर भगवान नहीं, तो शरीर क्या है? मैं शरीर को हम गदा समझते हैं। शरीर क्या है? गदा। और हम क्या हैं? आत्मा। हम क्या हैं? हम धोबी। धोबी, धोबी गधे को लेकर नदी पर जाता है, कपड़ा साफ करके इकट्ठा करके बांध बुन करके उसकी पीठ पर रखता है, ले आता है, ले जाता है, ले आता है। गधा किस काम का? ले जाने के लिए और ले आने के लिए, काम के लिए है ये। और हम कौन? हम धोबी। कपड़ा धोने से पगार किसको मिलने वाला है? किसको? धोबी को मिलता है कि गधे को मिलता है? तो पगार तो हमें पड़ना चाहिए। पगार तो हमें पड़ना चाहिए और गधे को क्या मिलना चाहिए? उस पगार में से रोजाना 10 रुपए का घास डाल दिया जाए तो हो गया, इससे ज्यादा क्या? और एक बाल्टी पानी नदी पर ही पी लेगा वहीं जाकर के,
घास भी डालना पड़ता नहीं है, पड़ता नहीं, घोड़े को डालना पड़ता।
होशियार तो भी हो तो ना। गधे के संबंध में ऐसा विचार लाएगा, होशियार धोबी हो तो विचार करता है कि गधे को 10 रुपए भी क्यों खर्च करे, नदी के किनारे पर छोड़ देंगे तो वहीं चर लेगा, नदी का ही पानी पी लेगा, न पानी पिलाना पड़ेगा न घास, 10 रुपए का घास खरीदना पड़ेगा,
ये भी पैसा
बचेगा,
इससे गधा पालते।
शरीर गधा है, इस गधे को भी पूरा 100 रुपया लगा रहे हो और आत्मा के लिए आप एक शास्त्र खरीद करके आत्मा के ज्ञान को बढ़ाने के लिए आगे पीछे देख रहे हैं, तो इसमें गधा कौन है, कौन है यही समझ में नहीं आ रहा। आत्मा गधा है कि शरीर गधा है? गधा कौन फिर? धोबी अपने पगार की चिंता नहीं कर रहा है, पूरे 100 रुपए पगार ला रहा है और गधे को घास ही खिला रहा है उससे, तो क्या ये धोबी गधा नहीं है? डोंकी नहीं है ये? तत्व चिंतन में सदा इस प्रकार विचार करने से शरीर का मोह कम होता है, संसार का मोह कम होता है और आत्मा के लिए प्रशस्त रास्ता मिलता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र क्या है, इसकी अनुभूति शरीर के प्रति निर्मोही हुए बिना नहीं होता। शरीर के लिए रात दिन कमा रहे हैं, 24 घंटा उसी गधे के पीछे हम वो कर रहे हैं। शरीर गधा है, उस गधे के पीछे रात दिन कमा रहे हैं और जो कमाई है सब उसी की दिख रही है। आत्मा के लिए कमाई क्या है ये नहीं दिख रहा है, जरा भी नहीं दिख रहा है। अपने स्वार्थ के लिए हम क्या कर रहे हैं बताओ? शरीर का स्वार्थ ही केवल पूर्ण करते जा रहे हैं और शरीर तो चाहता ही है, लाओ वो भी लाओ, ये भी लाओ, जरा ये भी चाहिए, आपको घुमा देता है वो। आप अलग हैं, शरीर अलग है, शरीर तो नौकर की तरह है, शरीर एक गधा है, उसके पीछे ही सब कुछ अपना जिंदगी बर्बाद करेंगे। असल गधा तो हम ही हैं, फिर शरीर गधा नहीं, शरीर ही होशियार है क्योंकि उसने मालिक से सब कुछ छीन लिया, 100 रुपए का नोट, पगार पूरा ही छीन लिया और अपना सुख लुटा लिया। असली गधे तो आत्मा है, ऐसा नहीं। जागो, जागने में ही जीवन है। शरीर के लिए कुछ नहीं करना, शरीर के लिए जितना आवश्यक उतना ही करना, अनावश्यक रूप से उसी का संपोषण में लगे हुए हैं, आत्मा को ही भूल गए हैं, फिर धर्म होगा कैसे? आत्मा को भूलने वाले लोग धर्म नहीं कर सकते। और धर्म कहीं मंदिर में और क्रियाकांड में, पूजन में नहीं है, ध्यान रखना। जैन धर्म आत्म उपासना का मार्ग है, क्रियाकांड का मार्ग नहीं है। अपन ने धन के प्रति मोह कितना कम किया जीवन में, शरीर के प्रति मोह कितना कम किया जीवन में, इसका संशोधन रोज होना चाहिए। छूटा कि नहीं छूटा शरीर मोह, धन का मोह छूट रहा है कि नहीं छूट रहा, इसका संशोधन होना चाहिए। इसकी साधना जिसके अधिक बढ़ रही है वो धर्मात्मा है, ये साधना मार्ग है। और अपने समाज में कितना पागलपन देखो तो, भगवान की उपासना पद्धति में विवाद करते बैठे, पूजन पद्धति में कि मैं भगवान को ये चढ़ाऊं कि ये चढ़ाऊं कि वो चढ़ाऊं कि, ये क्या जैन धर्म है? एक तो पूजन ही क्रियाकांड है और पूजन में भी जो वस्तु चढ़ा रहे हैं उसको लेकर के विवाद करते बैठे। ये डबल पागलपन है, धर्म को समझती ही नहीं। धर्म कहाँ होता है, कैसे होता है, है कहाँ वो धर्म? तुम्हारे फूल और लवंग में धर्म नहीं, धर्म है साधना, आत्म साधना में। तीर्थंकरों ने कहा शरीर का मोह कम करो, इससे कर्मों की निर्जरा होगी। आत्मा का चिंतन ज्यादा करो, इससे कर्म की निर्जरा होगी। आत्म ध्यान ज्यादा करो, आत्म चिंतन ज्यादा करो, इससे कर्म की निर्जरा होगी। कर्म की निर्जरा आत्म कल्याण, कर्म की निर्जरा ही मोक्ष। चाहे उस कर्म को आंशिक रूप से निर्जरा करो तो भी आंशिक रूप से मोक्ष, पूरा निर्जरा करो तो पूरा मोक्ष। कर्म बंधन से छूटना ये मोक्ष है क्या? नहीं, बस वो काम करो, वो जिससे होता हो उसको काम करो। इन झगड़ों में मत उलझो, उसमें भी यही सोचो बंध किसमें है? पाप का बंध, वो धर्म है। किसमें पाप का बंध है, किसमें नहीं है, इतना ही सोचो। जीव हानि पाप, बस अहिंसा परमो धर्म। जीव हानि जीव हिंसा पाप, जीव अहिंसा पूर्वक पूजन ये धर्म, ये अहिंसा, अहिंसा धर्म, हिंसा पाप। इतना भी विचार नहीं कर पा रहे हैं, कहां गई बुद्धि, मर गई क्या? बुद्धि मर गई क्या? मरी बुद्धि विचार नहीं कर सकती। जिस बुद्धि में लकवा लग जाए मृत हो जाती है। छोटे छोटे बातों में हम उलझ जाते हैं, झगड़े करते हैं, और ये इन झगड़ों का नाम ही पंथ है। जहां उलझन है, जहां धर्म नहीं है, जहां आत्म साधना नहीं है, आत्म साधना से छूने वाले विषय ही नहीं है, ये ऐसी बातें सब पंथ की बातें हैं। धर्म है अहिंसा। अहिंसा की उपासना विवेक्ष करना चाहिए, जिसमें हिंसा न हो, अनावश्यक हिंसा न हो, अनावश्यक हिंसा, आवश्यक अनावश्यक इसको सोचना ही तो विवेक है। इस विवेक के रास्ते से चलते रहेंगे, आत्म साधना के उद्देश्य को लेकर के चलते रहेंगे, आत्मा के गुणों का विकास करना चाहिए, करना है, इस ध्येय से चलते रहेंगे, आत्मा का कल्याण अवश्य होगा। मनुष्य पर्याय मिला है, उसमें भी श्रावक उच्चकुल उच्चकुल मिला है। कुल तो शरीर संबंधित होता है, वो शरीर उच्च मिला है, कुल उच्च है। जिनेंद्र भगवान की परंपरा के कुल में जन्म लेना, उस वंश में जिसमें आचार विचार जिनेंद्र भगवान के हैं, जो साधना जिनेंद्र भगवान के बताए हुए मार्ग के द्वारा अहिंसा की साधना करने वाला कुल है, उस परिवार में हमने जन्म लिया। और आत्मा की साधना को ही भूल गए और व्यर्थ की चीजों में उलझ गए तो जिंदगी बेकार हो जाएगी। नहीं, ये रास्ता नहीं अपना। धर्म का रास्ता अलग है और ये रास्ते सारे अलग है, इनको तो त्यागना ही है। अपने को आप त्यागने में स्वतंत्र हैं, ऐसा तो नहीं कि पहले से जो चला आया है उसी को ढोते रहो। इन परंपराओं को कब तक ढोओगे? जब तक तुम इन परंपराओं को ढोते रहोगे तब तक धर्म तो जिंदगी में आने वाला नहीं है, धर्म का स्वागत होगा ही नहीं। ये परंपराएं सब भार हैं, भार हैं, कौन निभाने वाला इनको? और अज्ञानी जीवों ने गुरुओं को भी दूषित कर दिया, खुद भी नहीं समझता और इसको शांति सागर जी की परंपरा कहता है। बस हो गए उनका, इससे ज्यादा कुछ आगे नहीं बढ़ता हो विचार, नहीं कुछ नहीं, ये शांति सागर की परंपरा, देवी देवता शांति सागर की परंपरा, अभिषेक शांति सागर की परंपरा, मतलब जो जो गलतियां हैं इनकी गलती, वो सब शांति सागर की, और जो असली शास्त्र है वो शांति सागर जी की भी नहीं है और अपनी भी नहीं, शांति सागर हमारे, और जो जो हम गलतियां कर रहे हैं वो शांति सागर जी की भी हैं और हम हमारी भी हैं और उनकी परंपरा। शास्त्र एक तरफ रह गया, जिनेंद्र भगवान का निर्दोष मार्ग एक तरफ रह गया और इन परंपराओं को ढोते ढोते हमारा जिंदगी बर्बाद हो रही है। तो ये सब अनर्थ क्यों हो रहे हैं? ये सब अनर्थ इसलिए कि हमें ज्ञान नहीं है। जैनागम पढ़ते हैं, जैनागम पढ़ते नहीं, पढ़ने के चक्कर में नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ते, पढ़ते नहीं, चक्कर में भी नहीं पढ़ते, और ये ऐसा होता रहा है। क्या आगे भी ऐसा ही होता रहेगा? ऐसा ही यदि करना है, वो परंपराएं ही अच्छी लग रही हैं, वो परंपराएं ही अच्छी लग रही हैं, तो फिर गुरुओं की जरूरत क्या है? सम्यक उपदेश, इतना मेहनत, आओ 6:30 बजे और जाओ 8 बजे, 1.5 घंटा बेकार रोज का, बेकार है कि नहीं? वही वही परंपरा को ढोना है, वो जो चल रहा है पूर्व का वही चलाना है, तो ये सब पढ़ना बेकार है। क्यों समय और खराब कर रहे हो यहां आकर के? वो 1.5 घंटे और उपयोग कर लो उसी में, बैठो उस देवी के पास, अलंकार करो, कहो उससे मुझे सुख मिलना चाहिए, करो अलंकार, ये जैन मार्ग यदि है तो करो, तो ये डेढ़ घंटे और लगाओ दो वहां। परंपराएं धर्म के लिए अति भार, आत्मकल्याण के लिए अत्यंत भार। गर्दन टेढ़ा हो जाएगा धोते धोते। कौन निभाने वाला इस परंपरा को? कोई नहीं, ज्ञानी नहीं निभा सकता इनको। यदि ये सभी शांति सागर जी की परंपरा है, अज्ञानी लोग कहते हैं शांति सागर जी की परंपरा, ये सभी गलत विषय शांति सागर जी की परंपरा है, तो फिर शांति सागर जी आगम से नहीं चलते थे, जिनेन्द्र भगवान के निर्दोष मार्ग से नहीं चलते थे, शुद्ध हुआ और फिर वो आगम के अनुसार नहीं चले हैं, तो उनका मुनि वेश, उतना उपवास, उतना तप, उतना निर्ग्रंथ दीक्षा लेना सब बेकार गया, व्यर्थ गया कि नहीं गया? इन परंपराओं को ढोते हुए महाव्रत भी व्यर्थ है क्या? नहीं, सब व्यर्थ। अज्ञानियों ने टीका लगा दिया शांति सागर जी को कि शांति सागर जी की परंपरा, क्या उन्होंने इनका समर्थन किया था?
उपदेश में सब देगी चाहते हो तो उपदेश दे गए, उसमें सब देगी, आत्मचिंतन करना, स्वाध्याय करना, ही करना सब बताते गए।
नहीं बताया है ना, फिर उनका नाम क्यों लेते हैं लोग? अपने स्वार्थ के लिए गुरु का उपयोग कर दिया,
गुरु ने हमको बता के गए।
हाँ, गुरु अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए गुरु को बर्बाद कर दिया कि नहीं किया? तो इनसे बहुत दूर रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए।
प्रत्येक मंदिर में बैठे कि हमें यह उपदेश है, उपदेश है क्या करना चाहिए, हम साहूत ने क्या करना चाहिए,
उपदेश लगाया कि नहीं वहाँ दीवाल पर? उसने कहाँ कहा है ये हमारी परंपरा है तुम चलाओ? ऐसा कुछ नहीं,
आत्मचिंतन, स्वाध्याय रोज करना,
ऐसा ही कहा है। 20 मिनट रोज स्वाध्याय करो, कम से कम 20 मिनट, तो 10 मिनट या 20 मिनट कहा है उसने, पढ़ाया हमने
नहीं तो।
और ये भी कहा, ये नकार संयम धारण करो कहा, अल्लाह कुंडी बटे है कोई धर। और माँ चल कुंडी बटे है खोदता ये तमदन ऐसी धर। बस अज्ञानियों को समझो और आप लोग सावधान। कुछ लोगों को जमली में है कि एक महाराज ऐसे कहते हैं, एक महाराज वैसे कहते हैं, शांति सागर जी ऐसे थे, ये महाराज ऐसे हैं, ये शायद कांची पंथी लगते हैं, शायद वो हमारे पंथी लगते हैं। क्या जंबलिंग करते हुए बैठे समझ में नहीं आता, और ये जंबलिंग क्यों हो रहा है? तो स्वाध्याय नहीं है इसलिए जंबलिंग है। जैन धर्म का सिद्धांत नहीं जानते, जंबलिंग करते हुए बैठे। साधना करो, साधना आत्म साधना करो, शरीर का मोह छोड़ो, ये जैन धर्म है। रोज शांति सार महाराज ने कहा, रोज 20 मिनट कम से कम सामायिक करना सीखो। किया ही कोई करता है घर में 20 मिनट सामायिक? अल्लाह कुंडी बढ़िया है खुद मत मंदिर का बोर्ड है शांति सार को उपदेश छोड़ूदन कैसी याद खतरे की क्या करे तुमने अल्लाह ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಹಚ್ಚೋ ಸುಮ್ಮ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಹಚ್ಚರ ಚಲೋ ನಾವು ಇದು ಗಾಡಿ ಮ್ಯಾಗ ಬರ್ತೇನೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊದೇವು ಹಿಂಗ್ರಿ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸಾಮಾಯಿಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದ, ಗುರುಗಳದ ಆದೇಶ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ತಿ ಹಾಕ್ರೆ ಜನರು ಬೇಡದ ಉದ್ದೇಶ. ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಕ್ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಡಿಮೆ. ಅದು ದಸ್ ಮಿನಿಟ್ ತು ಕಮ್ ಸೆ ಕಮ್ ಬೈಠು ಮಂದಿರ ಆತಿ ಯಾ ಘರ್ ಮೇ ರಹತಿ ಸಾಮಾಯಿಕ ಕಹೀ ಭಿ ಕರ್ ಸಕ್ತೆ. ದಸ್ ಮಿನಿಟ್ ಬೈಠು ಅಪನೆ ಶರೀರ ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಮೇ ವಿಚಾರ ಕರೋ ಕಿ ಈ ಶರೀರ ಮೈ ನಹಿ ಹೂ, ಮೈ ಅಲಗ್ ಆತ್ಮಾ ಹೂ, ಶರೀರ ಯೇ ಅಲಗ್ ಹೇ, ಯೇ ಮೇರಾ ನೌಕರ್ ಹೇ ಔರ್ ಮೈ ಉಸ್ಕಾ ಮಾಲಿಕ್ ಹೂ. ಇಸ್ ನೌಕರ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಕುಛ್ ಖಿಲಾನಾ ಪಡ್ತಾ ಹೈ, ಖಿಲಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಏಕ್ ದೋ ಬಾರ್ ಖಿಲಾತೆ ಹೈ, ಔರ್ ಕ್ಯೂಂ ಖಿಲಾತೆ ಹೈ, ಇಸ್ಸೆ ಕಾಮ್ ಲೇನಾ ಹೈ, ಇಸ್ಸೆ ಧರ್ಮ ಕೆ ಕಾಮ್ ಹೋತೆ ಹೈ, ಇಸ್ಸೆ ಹಮಾರೆ ಸಂಸಾರ ಕೆ ಭಿ ಕಾಮ್ ಹೋತೆ ಹೈ, ಬಸ್ ಈ ಗದಾ ಹೈ, ಗದಾ ಹೈ, ಔರ್ ಹಮ್ ಉಸ್ಕೆ ಮಾಲಿಕ್ ಹೈ. ಅಪನೆ ಪಗಾರ್ ಕೋ ಕಮಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಇಸ್ಕೋ ಉಪಯೋಗ ಮೇ ಲೇತೆ ಹೈ ಹಮ್. ಐಸಾ ಚಿಂತನ್ ಕರೆಂಗೆ, ಯೇ ಕ್ಯಾ ಸಾಮಯಿಕ ನಹೀ, ಸಾಮಯಿಕ ಮೇ ಕ್ಯಾ ಕರನಾ ಚಾಹಿಯೆ. ಕಭಿ ಪೂಛಾ ಆಪ್ ಲೋಗೋನೆ, ಆಪ್ ದಿವಾಲ್ ಪರ್ ತೋ 20 ಮಿನಿಟ್ ಸಾಮಯಿಕ ಕರೋ ಕಹಾ ಹೈ, ಮಹಾರಾಜ್ ವೋ ಸಾಮಯಿಕ ಕಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಕರನಾ ಚಾಹಿಯೆ, ನಹೀ ಪೂಛ್ತೆ. ಪೂಛ್ತೆ ಮಹಾರಾಜ್ ಯೇ ಫೂಲ್ ಚಢಾನಾ ಚಾಹಿಯೆ ಕಿ ಲವಂಗ ಚಢಾನಾ ಚಾಹಿಯೆ ಕಿ ದೂಧ ಸೇ ಅಭಿಷೇಕ ಕರನಾ ಚಾಹಿಯೆ ಕಿ ಫಲಾನಾ ಚಾಹಿಯೆ, ಯೇಹಿ ಪೂಛ್ತೆ. ಜೋ ಬೇಮತಲಬ್ ಕಿ ಬಾತೆ, ಕಿತನಿ ವ್ಯರ್ಥತಾ ಹೈ ಹಮಾರ ಜೀವನ ಮೇ, ವ್ಯರ್ಥ ಕ್ರಿಯಾಕಾಂಡ ಕಿತನೆ ಹೈ. ಮಹಾರಾಜ್ ಧರ್ಮ ಕ್ಯಾ ಹೈ, ಸಾಮಯಿಕ ಕ್ಯಾ ಹೈ, ಯೇ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ತೋ ಆತೇ ಹೀ ನಹೀ. ಧರ್ಮ ಕಾ ಸ್ವರೂಪ ಸಮಝೋ, ಆತ್ಮಾ ಕಾ ಸ್ವರೂಪ ಸಮಝೋ, ಸಾಮಯಿಕ ಕಾ ಸ್ವರೂಪ ಸಮಝೋ, ಬಾರಹ ಅನುವೃತೋ ಕಾ ಸ್ವರೂಪ ಸಮಝೋ, ಓಸ್ ಜೈನ್ ಸಾಧನಾ ಹೈ. ಜೈನ್ ಧರ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಸಾಧನಾ ವೋ ಹೈ. ಆಪ್ ಆತ್ಮಾ ಕೆ ಲಿಯೆ ಕುಛ್ ನಹೀ ಕರ್ ರಹೇ, ಅಭಿ ಜೀರೋ ಹೈ, ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆತ್ಮಾ ಕೆ ಲಿಯೆ ಕುಛ್ ಹೋ ಭಿ ರಹಾ ಹೈ ತೋ ಏಕ್ ಡೇಢ್ ಘಂಟೆ ಜೋ ಆ ರಹೇ ಹೈ ಸುಬಹ, ಯೇ ಆತ್ಮಾ ಕೆ ಲಿಯೆ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ. ಕರ್ನಾ ಹೈ ಕುಛ್ ತೋ ಕರ್ನಾ ಹೈ ಅಪ್ನೆ ಜೀವನ ಹಿತ ತೋ ಹಮ್ ಜೋ ಸಂಕೇತ ದೇತೆ ಹೈ ಉಸ್ ಪರ್ ಚಲತೆ ರಹೋ. ತುರಂತ ಆಚರಣೆ ಮೇ ಲಾನಾ, ಏಕ್ ಸಂಕೇತ ಮಿಲ್ ಗಯಾ ಗುರು ಕಾ, ಆಚರಣೆ ಮೇ ಲಾನಾ. ಲಗ್ನಾ ಚಾಹಿಯೆ ಕಿ ವೋ ಕಹ ರಹೇ ಹೈ ತೋ ಹಮ್ ಇಸ್ಕೋ ಭಿ ಕರ್ಕೆ ದೇಖೇ. ಸ್ವಯಂ ಕಿ ಪ್ರೇರಣಾ ಮಿಲ್ನಿ ಚಾಹಿಯೆ ಭೀತರ್ ಸೇ, ಸುನ್ನೆ ಕೆ ಬಾದ್ ಸ್ವಯಂ ಕೋ ಪ್ರೇರಿತ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಿಯೆ ಭೀತರ್ ಸೇ. ಐಸಾ ಕಹಾ ಹೈ ತೋ ಜರಾ ಹಮ್ ಭಿ ಕರ್ಕೆ ದೇಖ ಲೇ, ಮಹಾರಾಜ್ ಕೈಸೆ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಿಯೆ ಪೂಛನಾ ಚಾಹಿಯೆ ತೋ ಹಮ್ ಬತಾ ದೇತೆ, ಐಸಾ ಐಸಾ ಕರೋ, ಐಸಾ ಐಸಾ ಕರೋ, ಯೇ ಹೋ ಜಾಯೇಗಾ, ಆನಂದ ಆಯೇಗಾ. ದಸ ಲಕ್ಷಣ ಕೈಸೆ ಮನಾಓಗೆ, ದೋ ಬಾರ್ ಪೂಛಾ. ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಹೋಕರ್ ಕೆ ಮನಾನಾ ಹೈ ಕೆ ವಿಕಲ್ಪ ಕೋ ಲೇಕರ್ ಕೆ, ತೋ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಕಾ ಮತಲಬ್ ಕ್ಯಾ?
ವಿಕಲ್ಪ ಕರ್ನಾ
ನಹೀ, ಯೇ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಕಾ ಅರ್ಥ ನಹೀ. ಪರಿಗ್ರಹ ಕಾ ವಿಕಲ್ಪ ಛೋಡ್ ಕರ್ ಕೆ 10 ದಿನ ಆತ್ಮ ಸಾಧನಾ ಕರೋ. ಆತ್ಮ ಸಾಧನಾ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಹೈ, ಆತ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾ ಮಾರ್ಗ ಹೈ. 10 ದಿನ ಆತ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನೆಕ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಆಪ್ ವಿಶೇಷ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಕರ್ತೆ ಹೈ, ಸಾಲ ಭರ ಮೇ 10 ದಿನ. ಸಂಸಾರ 355 ದಿನ ಕರ್ತೆ ಹೋ, 10 ದಿನ ಧರ್ಮ ಕರೋ, ಸಂಸಾರ ಕಾ ಸಬ್ ವಿಕಲ್ಪ ಛೋಡೋ. ನಹೀ ಭಿ ಛೂಟತಾ ಹೈ ತೋ ಜಬರ್ದಸ್ತಿ ಛೋಡೋ. ಕ್ಯಾ ನಹೀ ಹೋ ಸಕತಾ, ಅಸಂಭವ ಹೈ ಕ್ಯಾ? असंभव कुछ है क्या? कुछ भी मानव के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। और वो 355 दिन आत्मा के लिए थी क्या? डोंकी के लिए थे? आत्मा के लिए कहां दिया तुमने? कितने दिन दिया? आत्मा के लिए जितने दिन देते हो वो जैन धर्म है, वो जैन साधना है, वो कल्याण मार्ग है। तो कम से कम एक घर का एक व्यक्ति बाहर निकले धर्म करने के लिए और 10 दिन घर नहीं जाना, घर का विकल्प लेना नहीं, घर वालों को सौंपना और 11वें दिन फिर विकल्प रखना। 11वें दिन आऊंगा, उस समय तक ये समझ लेना मैं हूं ही नहीं गांव में। जैसे यात्रा में जाते हैं ना तो कोई निर्विकल्प होकर के रहते घर के लोग कि वो यात्रा में गए हैं और वो फलानी तारीख को आने वाले हैं, अभी 10 दिन लगेंगे। आप भी निर्विकल्प रहते और वो भी निर्विकल्प रहते। यात्रा के लिए तो हम निर्विकल्प होकर के सब घर बार सब छोड़ करके जाते हैं। वैसा क्या दशलक्षण पर्व, आध्यात्मिक पर्व, आत्मिक पर्व, आत्म विकास का पर्व, ये हम विकल्प छोड़ करके नहीं मना सकते 10 दिन? वो तो हंसते हैं, अभी आत्मा को लग नहीं रहा है भीतर कि मुझे करना चाहिए ऐसा। दसवीं दिन साधना करो, ये कहा है श्रावक धर्म में, 10 दिन धर्म के लिए, बाकी सब गधे के लिए। 10 दिन आत्मा के लिए, स्वयं के लिए, अपने हित के लिए, बाकी सब गधे के लिए। अब 10 दिन घर छोड़ना है तो उन 10 दिनों में हम सामायिक करना सिखाएंगे, उपदेश भी सुनेंगे, पूजन भी करेंगे, ध्यान सिखाएंगे, सामायिक यानी ध्यान, ध्यान सिखाएंगे, सब करेंगे। और आपको ये अनुभव करके देखना है कि मुनि महाराज का जीवन किस प्रकार से होता है। स्वावलंबन जीवन, अहिंसा का जीवन किस तरह का होता है अनुभव लेंगे 10 दिन, अनुभव आएगा। उत्साहित तो हो, उत्साह है क्या? नहीं
है, है।
कल एक कांदू कॉलोनी की ओर राजस्थान के आए थे, एक परिवार आया था। उस गांव में 300 घर हैं, 300 दुकान हैं उनके, सब दुकानदार तीन, एक ही उन्होंने निर्णय लिया कि दुकान 10 दिन नहीं खोलेंगे। सब लोग तैयार हो गए, उसमें एक दो लोग अड़चन पैदा करने लगे कि हमारा नहीं चलता। तो उन्होंने कहा कैसे नहीं चलता, चलेगा, अगर नहीं चलता है तो हम उसकी भर्ती हम करेंगे, अगर कम पड़ा तो भर्ती हम करेंगे, लेकिन दुकान बंद करना है। बंद कर दिया, दोनों ने भी मान लिया। 10वें दिन कहता है मेरे किसी का सहयोग नहीं चाहिए, मुझे जो आनंद आया है अब मैं मालोमाल हो गया हूं, मुझे अब शरीर की फिक्र नहीं, दुकान की फिक्र नहीं, मेरे पुण्य के मेरे भाग्य के उदय से जितना मिलेगा उतना मिलेगा, वही सच्चा जीवन है। कमाई कमाई कमाई, धन 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 के पीछे जीवन बर्बाद हो रहा था, मुझे ख्याल भी नहीं आया था, लेकिन सद्गुरु का वचन सुनकर अब हमको समझ में आया है कि जीवन क्या है। 300 दुकान बंद, साहस किया, 10 दिन नहीं खोला, क्यों? गरीब हो गए, मर गए 300 घर के लोग, मरेंगे कि जीवन में बहुत बड़ी समस्या खड़ी होगी। ये लोभ है, लोभ, लोभ जो हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। इसको दुराशा कहते हैं। हमको आशा नहीं छोड़ना है, दुराशा को छोड़ना है। उसकी मर्यादा रखना है। 10 दिन कुछ संसार के कार्य किनारे हो जाते हैं तो हमारा जिंदगी कहीं खराब नहीं होती, कहीं समस्याएं नहीं आती। जैसा है वैसा ही चलेगा, उससे अच्छा चलेगा, क्योंकि तुमने धर्म किया है, पुण्य कमाया है, ये पुण्य साथ देगा।
वो तुमको नजीक से आया है, प्रैक्टिकल करके देखो क्या चीज है, धर्म क्या है, कि प्रैक्टिकल आया है, तुम उसका मत अनुभव लिए हो, ऐसा बोला हूँ। हम तो सब गांव वाले सब कह ले,
उन्होंने बोला कि नहीं, परिवार वाले राजस्थान के आए थे कल,
उसको पूछा, बहुत इतना आनंद आता है, कितना आनंद आता है वो मैं पता नहीं, तुम प्रैक्टिकल करके देखो।
हम
आम कितना घोड़ा खाके पाया देखना।
हम कहाँ कह रहे थे, हम ये नहीं कहे, वो तो प्रैक्टिकल करके तुम देखो कहाँ
है।
तुम प्रैक्टिकल नहीं भी करोगे तो मैं कराता हूँ, आओ, मैं कह रहा हूँ।
हम बाहर गांव के लोग आएंगे इधर तुम्हारे गांव में, बैठा
बिल्कुल
तुम बाहर
उनके गांव में। सुधा सागर जी का चतुर्मास बार हो रहा है, सुधा सागर अपने संघ के सुधा सागर महाराज का चतुर्मास वहां हो रहा है। हजारों लोग बाहर से आते, 1000 के ऊपर संख्या बढ़ने की संभावना बता रहे थे वो इस साल। वो जो बाहर से आएंगे 10 दिन सारी विकल्प छोड़ करके आते हैं, मोबाइल भी साथ में नहीं लाते, वो उधर का विकल्प लेना ही नहीं, मोबाइल फोन आ गया कि फिर वो विकल्प का कारण बनेगा। मान के चले कि हम सामायिक में बैठे और मोबाइल की घंटी बज गई और तुम्हारा 10 लक्षण बेकार हो गया। विकल्प सूतक है धर्म का, आत्मा का सूतक है वो। विकल्प आत्मा में सूतक लाता है, और कोई व्यक्ति मर जाते हैं, हम छू जाते हैं तो शरीर को सूतक लगता है, छुआछूत, अब स्नान करो, एक दिन का सूतक, छूने से शरीर को सूतक आता है, और संसार का मोह करने से आत्मा को सूतक आता है। मोह आत्मा से उत्पन्न होता है कि शरीर से उत्पन्न? किसमें से होता है? आत्मा में उत्पन्न होता है। जो आत्मा में उत्पन्न विकार होता है वो आत्मा का सूतक, जो शरीर में विकार उत्पन्न होता है वो शरीर का सूतक। सूतक की परिभाषा ये है। दस दिन सूतक से दूर रहना, और सूतक के कारणीभूत मोबाइल को भी साथ में नहीं रखना, और ये समझ के चलना कि अपन मुनि हैं, मुनि महाराज के समान ही सब क्रियाएं 10 दिन के लिए कर रहे हैं, 10 दिन के मुनि बन गए हैं। आहार के लिए भी सीधा आपको ले जाया जाएगा, शुद्ध भोजन कराया जाएगा, पड़गाया नहीं जाएगा, इतना तो है। यदि उसको भी चाहते हो तो आज दीक्षा ले लो। नहीं, हमको भी पड़गाना चाहिए तो दीक्षा ले लो आज। दीक्षा लेने के लिए यही पात्रता चाहिए, निर्मोही होना, पीछे का कुछ भी विकल्प ना हो, और सब आप जो कुछ करना था कर लिया है, पूरी तरह से निर्विकल्प हो तो दीक्षा के पात्र होता है। उसी दीक्षा की पात्रता को लाने के लिए 10 दिन यहां अभ्यास करना है, हम दीक्षा के पात्र हो जाएं। 10 दिन अगर आपको सूतक नहीं लगा, आत्मा का सूतक, तो मैं कहता हूं आप दीक्षा के योग्य हैं। अब लियो या नहीं लियो, मैं जबरदस्ती नहीं करता। लोगे कि नहीं लोगे कि, लेकिन पात्रता तो आपके पास है, आप पास हो गए, हम सर्टिफिकेट दे देते हैं। 10 दिन में घर को याद नहीं करना, घर को मन में नहीं लेना, कोई आ जाए कुछ भी हो जाए उससे कोई मतलब नहीं। जैसे मुनि महाराज रहते हैं, उनके घर में कुछ घटित हो गया, सुख दुख इनके मन में आते हैं क्या, विकल्प आते हैं क्या? ऐसा आपको 10 दिन रहना है।
10 दिन
का शिविर है, 10 दिन का शिविर। उत्तम क्षमा आदि ये आध्यात्मिक पर्व है या लौकिक पर्व है? सांसारिक पर्व तो नहीं है ना लौकिक, जैसे स्वतंत्रता का दिन आया ये राष्ट्रीय पर्व कहलाता है, ये गया वो, जैसे वो एक आता है कौन सा नाग पंचमी, वो क्या है? वो धर्म के संबंधित विषय है क्या? वो तो अज्ञानी जीवों का पर्व है, वो
हम नहीं मनाते।
हाँ, उस दिन क्या करते हैं अज्ञानी लोग? नाग लाते हैं मंदिर में, लाकर के अभिषेक करते हैं, वो भी दूध का अभिषेक। पत्थर ला करके रखते हैं, सांप की मूर्ति ला करके रखते हैं और दूध का अभिषेक करते हैं। ऐसा क्यों करते? पत्थर का सांप क्यों लाते हो? साक्षात सांप क्या नहीं मिलते? जब नहीं मिलते हैं तो पत्थर रखना चाहिए। हमारे भगवान अरहंत भगवान नहीं मिलते, इसलिए पाषाण का भगवान बनाया, बनाना पड़ा अपने को। सांप मिलते हुए भी आप उसका अभिषेक नहीं करते? अगर उसका करते तो वो खुश होता। पत्थर का अभिषेक, पत्थर के सांप का अभिषेक करके सांप को खुशी कर रहे हैं, सांप को खुश कर रहे
हैं। धंधा हो गया।
धंधा भी कहां, वो दूध और बर्बाद हो रहा है, ये धंधा है क्या?
दूध बर्बाद,
धंधे में तो लाभ होना चाहिए।
बाकी सब ये नाली वाले सब धंधा ही उसका, वो डॉक्टर का वो करेगा काबू धंधा हो गया, मजा धंधा हो गया,
धंधा हो गया। वो लेने वाला धंधा करता है। आपका धंधा है क्या? आप धंधे में सहयोग दे रहे हैं। जो ये करते हैं तो उनके धंधे में ये सहयोग कर रहे हैं, यानी उनका धंधा चला रहे हैं ये लोग। संसार में बहुत सारी क्रियाएं ऐसी हैं जो मूर्खता की क्रियाएं, उनको भी पहचान लेना चाहिए कि मूर्खता की क्रियाएं मेरी हैं क्या नहीं, ये क्यों करना, किस लिए करना। सोच सोच के करो, ये क्रियाएं सोच सोच करके की जाती हैं, उसके पीछे लाभ हानि सोचो, धर्म के प्रति कोई धक्का है क्या सोचो। धर्म तो रत्न है आपका जीवन का, सम्यक एक रत्न है, उसको कहीं कलंक लग रहा है क्या, उसके ऊपर कोई धूल बैठ रही है क्या इन क्रियाओं को करने से, वो चिंता करे क्या, इसी की चिंता करे जो करते आए। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य जिन चैत्यालय, ये नव देवता उनको हम नमोस्तु बोलते। चार एक्स्ट्रा हो गए। उस दिन प्रश्न आया था कि नौ देवता नौ हो गए तो इनको नमोस्तु बोलना क्या नहीं, पांच को ही नमोस्तु बोला जाता है तो इनको नमोस्तु का उपयोग करना क्या नहीं, ये प्रश्न था। तो जिन धर्म को नमस्कार नहीं करोगे? जिन धर्म क्या है? अहिंसा धर्म,
अपना धर्म,
अहिंसा गुण है। तो अहिंसा को नमस्कार करो या अहिंसावान अरहंत को नमस्तु करो, अहिंसावान साधु परमेष्ठी को नमस्तु करो, एक ही बात है। न धर्मो धार्मिकैर्विना, वह अहिंसा गुण धर्मात्मा वो में ही होता है, आत्मा में होता है, आत्मा को छोड़कर कहीं आकाश में नहीं होता, पुद्गल में नहीं होता, जड़ वस्तुओं में अहिंसा नहीं होता। अहिंसा की उत्पत्ति तो आत्मा में होती है, वो गुण वंदनीय। तो जैन जिन धर्म का मतलब क्या है, अहिंसा धर्म, यानी आत्मा में, जिस किसी भी आत्मा में यदि अहिंसा गुण प्रकट हुआ हो तो वंदनीय। और जहां अहिंसा गुण प्रकट होता है वहां संयम नहीं रहता है क्या? संयम चरित्र नियम से रहता है। तो संयम कहो अहिंसा कहो बात तो एक ही है, जहां संयम है वहां अहिंसा है, जहां अहिंसा है वहां संयम है, बात तो एक ही है। इसलिए हम जिन धर्म को भी नमस्तु करते हैं, करना ही चाहिए, जब हम आचार्य परमेश्वर को नमस्तु करते हैं नमो आहिर्यानम, जब हम साधु परमेश्वर को नमस्कार करते हैं नमो लोये सवसापनम, उसमें अहिंसा को नमस्कार हो रहा है कि साधु के शरीर को? अहिंसा को। अहिंसा वह क्या है? तो संयम है। संयम कहो अहिंसा कहो बात तो एक ही है। तो इस अर्थ में जिन धर्म भी वंदनीय है, जिनागम अहिंसा का सिद्धांत, अहिंसा का जो संविधान है वह जिनागम है, वो आगम उसके जो सिद्धांत, वह जो संविधान है अहिंसा धर्म का, वो वंदनीय है कि नहीं? तो वो भी वंदनीय है। सिद्धांत कहो अहिंसा कहो बात तो एक ही हो गई। और जिन चैत्य, चैत्य ने जिनेन्द्र भगवान की मूर्ति, जिन चैत्य जिनेन्द्र भगवान की मूर्ति, मूर्ति वंदनीय है क्या नहीं? मूर्ति वंदनीय है क्या नहीं? नहीं। मूर्ति यानी पाषाण हो गया, उसमें कौन वंदनीय? गुण वंदनीय। जो हम पंच कल्याण करते हैं उसमें संयम गुण डालते हैं क्या नहीं? अब संयम गुण डालने का विकल्प आपने किया और डाल दिया तो उसको संयमी मानने लगे आप, तो उस संयम को आप नमस्कार करते न कि पाषाण को? पाषाण की वंदना नहीं होती, शरीर की वंदना नहीं होती, वंदना होती है उसमें डाला गया गुण, वो वंदनीय है। तो यहां पर एक प्रश्न उठता है, महाराज अभी तो कहा था आपने ये गुण तो आत्मा में उत्पन्न होते हैं, वहां पाषाण में पुद्गल में कैसे उत्पन्न हो गए ये बताओ? हाँ, जब साक्षात भगवान हमारे सामने नहीं होते तो उनको परोक्ष रूप से स्मरण करने के लिए एक प्रतिबिंब है, एक प्रतिबिंब है ये। इस प्रतिबिंब को निर्मित करके उनका रूप देकर, उनके शरीर का आकार देकर, वीतराग बनाकर, उस वीतराग पाषाण में अहिंसा सत्य अचूर ब्रह्मचर्य अपरिग्रह ये गुण डाले गए, ये चरित्र डाला गया, डाल करके हमारे भगवान वो जो साक्षात थे वही साक्षात भगवान ये हैं। मूर्ति को हम साक्षात भगवान की तरह मानते हैं कि पाषाण की तरह मानते हैं? भगवान की तरह ही मानना चाहिए, अन्यथा भक्ति नहीं आएगी। भक्त जब भगवान की मूर्ति को देखता है उस समय कहता है भगवान आप तो साक्षात भगवान ही हैं, ऐसा मानसिकता बना करके वो भक्ति करता, ऐसा मानसिकता बना करके वो वंदना करता है। वहां पर भी शरीर की वंदना नहीं होती थी, साक्षात भगवान के सामने गुणों के, आत्मगुणों की ही वंदना होती थी। यहां पर भी पाषाण की वंदना नहीं होती है, न पाषाण की सुंदरता की वंदना होती है, न पाषाण के जो सौष्ठव है अंगोपांग आदि बहुत अच्छे हैं न उसकी वंदना होती है, वहां पर तो संयम की वंदना होती है। भगवान के सामने खड़े हो जाएं तो ऐसा आना नहीं चाहिए मन में भाव कि भगवान की मूर्ति ठीक नहीं है, ये बिंब को देख करके ऐसा भाव कभी नहीं आना चाहिए, भगवान का भगवान की मूर्ति ठीक नहीं है, हाथ ठीक से नहीं बने हैं, नाक ठीक से बना नहीं है, बाल ठीक से नहीं बने हैं। आप दर्शन करने के लिए आए हैं तो वहां पर क्या देखना है? गुण देखना है। भगवान के गुणों को नमस्कार करो और जाओ, हो गया तुम्हारा कर्म। गुणों की भक्ति करो और जाओ। शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो तो भी वो भगवान ही है। आपका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था और उस भव से आपने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो लोगों को ये सोचना चाहिए कि महाराज तो टेढ़े मेढ़े हैं, केवल ज्ञान तो हो गया है लेकिन हम टेढ़े मेढ़े होने के कारण से नमस्तु नहीं करेंगे उनको। कहोगे अरहंत मानोगे कि नहीं? नमो अरिहंतानम कहते ही उन सबको नमस्कार होता है जो अच्छे शरीर वाले थे और जो अंगों पंग से विकल थे, उन सबको नमस्कार हो रहा है और अनादिकाल से वो सभी मोक्ष गए ही हैं। ये ठीक है कि अच्छे भगवान को देख करके आपका मन बहुत लगता है, शरीर से अच्छे खड़े हो जाते हैं, आदत तो है ही शरीर से आकर्षित होने की। लेकिन वो ठीक है क्या? भगवान का रूप देखते ही भगवान के गुणों का ध्यान आना चाहिए। गुण ध्यान में आ गए, उनके अहिंसा सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह इत्यादि मूल गुणों को मेरा नमस्तु।
आप इतना सुंदर है तो आपने गुण कितने सुंदर है ऐसा भाव?
हाँ
ऐसा भाव
लेते। और फिर वो बाहर से सुंदर ना हो तो, बाहर से इतना खराब है तो आप कितना अंदर खराब होंगे? ऐसा तो नहीं कहोगे ना? कन्नड़ में एक कहावत है, आकड़ू कप्पा अरे हालु कप्पे, गाय काली है तो क्या दूध भी काली नहीं? गाय काली भी हो सकती है, सफेद भी हो सकती है, दूध को तो किसी भी गाय में देखो वो सफेद है। धर्म धर्म ही होता है, जिसका अपन ने पंच कल्याण किया है उसमें अहिंसा सत्य ही डाला है ना, कि टेढ़े मेढ़े शरीर को देख करके हिंसा असत्य अचौर डाला है, ऐसा तो नहीं किया है, गुण ही डाले जाते हैं, वो गुण वंदनीय है, उन गुणों को ही हम नमस्कार करते हैं। भगवान आप शरीर से इतने अच्छे हैं तो अंदर कितने अच्छे होंगे, एक भक्ति करने का एक तरीका है, एक माध्यम है, माध्यम बना करके हम अंदर जा रहे हैं, भीतर बाहर ही इतने अच्छे हैं तो भीतर कितने अच्छे होंगे? बेचारे भगवान फिर बाहर से अच्छे नहीं होते तो क्या कहते? बाहर भगवान तुम तो भगवान तो हो लेकिन बाहर ही इतने टेढ़े मेढ़े हो तो कितने टेढ़े मेढ़े अंदर से होंगे, ऐसा भक्ति करोगे?
तीर्थंकर टेढ़े मेढ़े होते नहीं,
तीर्थंकर नहीं, अन्य भी तो हो सकते हैं, अरहंत और भी अन्य भी हो सकते हैं। तीर्थंकर की पूजा करते हैं, अन्य की पूजा नहीं करना चाहिए क्या? अन्य अरहंत भी जो हुई हैं उनकी भी तो पूजा होती है। आप जब जाप करते हैं नमो अरिहंतानम जप करते हैं तो उसमें तीर्थंकर भी केवल नहीं आए, समस्त विगत अनागत वर्तमान सब काल के सब तीर्थंकर सब केवली सब आ गए उसमें, तो उन गुणों को तो नमस्कार किया। अब नमस्कार कर रहे हैं तो पूजा भी तो करनी पड़ेगी, मान के चले कि वही टेढ़े मेढ़े शरीर वाले केवल ज्ञानी भगवान अरहंत सामने आ गए तो नमस्कार करोगे कि नहीं, भक्ति करोगे कि नहीं? अब माध्यम किसका बनोगे बाहर से? शरीर को माध्यम बना करके ही भीतर जाओगे तो भगवान बाहर से टेढ़े मेढ़े इतने हो, शरीर इतना टेढ़ा मेढ़ा है, तो आप भीतर कितने टेढ़े मेढ़े? ऐसी भक्ति करोगे कि ऐसी भक्ति करोगे हे भगवान आपका शरीर इतना टेढ़ा मेढ़ा तो दिखता है लेकिन आप कितने सरल हैं अंदर, भक्ति तो पलट जाएगी यहां। ये जिनागम जिन चैत्य, जिन चैत्य में जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा, वो जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा जिनेन्द्र भगवान में अंतर्भाव होता है, जिनेन्द्र भगवान में उसका समावेश होता है। और जिन चैत्यालय यानी मंदिर, मंदिर का समावेश किसमें करोगे? तो समोशरण में। समोशरण मंदिर जो है समोशरण के समान है और मंदिर में रहने वाली जो मूर्ति है वो साक्षात भगवान के समान है। तो ये चार जो अलग से जोड़ दिए गए और नौ बना दिया गया, जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य जिन चैतन्य, जो अलग से चार जोड़ दिया, ये जोड़ा इसलिए है कि साक्षात का अभाव होने पर परोक्ष में तुम क्या करोगे? तो इस प्रकार से चार विकल्प आते हैं, इनके माध्यम से हमारी उपासना चलती है। जब साक्षात तीर्थंकर नहीं रहते तो मंदिर और मूर्ति के माध्यम से उसी तीर्थंकर की उपासना यहां हम करते हैं, गुणों का आरोपण करके उन गुणों की उपासना हम करते हैं। इसलिए नौ देवता हो गए, नौ देवता वंदनीय हैं, इस तरह से इसको समझना चाहिए। समोशरण, समोशरण वंदनीय है क्या? नहीं, समोशरण में रहने वाले मूर्ति वंदनीय है। शरीर वंदनीय है क्या? शरीर में रहने वाले संयमी गुणवान आत्मा वंदनीय है, आत्मा वंदनीय है। उसी प्रकार मंदिर की दीवार वंदनीय नहीं, मंदिर का शिखर वंदनीय नहीं, उस दीवार उस शिखर में रहने वाले विराजमान गुणधारी भगवान के गुण, भगवान के शरीर भी नहीं, भगवान के गुण वंदनीय है। वो वहां रहते हैं इसलिए इनको वंदनीय कहा, ये औपचारिकता जाती है। व्यवहार से कहा कि जिन चैत्यालय वंदनी, मतलब भगवान मंदिर में भी बैठे हो तो भी वंदनी, अलग से बैठे हो तो भी वंदनी, चैत्यालय भी वंदनी, चैत्यालय के भगवान भी वंदनी, और चैत्य अलग से हो जैसे श्रवण बेलगोल मंदिर है क्या महाबली भगवान के ऊपर, तो चैत्य कहलाया, चैत्य यानी मूर्ति प्रतिमा, वो प्रतिमा भी वंदनी, और वो प्रतिमा यदि अंदर हो मंदिर में या समोशरण में तो वो भी वंदनीय। इस तरह से नौ देवता टाइम हो गया है।
प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी जयवंतो मां जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे शीश नवाते कर्म हरो मां अब तक हम विषयांग रहे अब तक